ओम शांति। आज की मुरली से बाबा हमको थालियां भर भर के देता है। कौन सी? ज्ञान रत्नों की थालियां। क्या थाली? तो छोटी सी होती है। बाबा कहते हैं जैसे मैं ज्ञान सागर हूं, मैंने तुम्हें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है। तो आज पहली चर्चा करेंगे ज्ञान मनन, जो हमारे जीवन के लिए, उन्नति के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी चर्चा करेंगे आज के वरदान पर। याद होगा वरदान? स्वमान से अभिमान समाप्त करने वाले, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। स्वमान के द्वारा हम अपने अभिमान को नष्ट करते चलें। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें भी हैं, मनन चिंतन स्वमान। मनन चिंतन की हमें आदत डालनी है सबको। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सुंदर ज्ञान है लेकिन चिंतन चलता हो व्यर्थ। मन का काम मनन करना ही है, मन की नेचर है मनन करना। लेकिन अगर वो व्यर्थ पर मनन करता है तो ज्ञान मनन नहीं हो पाता। इसलिए जिन्हें ज्ञान मनन का सुख लेना है वे व्यर्थ के मनन से स्वयं को मुक्त करें। बहुत पहले बाबा ने एक बहुत रहस्य भरी बात कही है, सब याद करेंगे। भोजन जब ठीक से हजम हो जाता है तो रक्त बन जाता है शक्ति। ज्ञान को भी यदि मनन करते हैं तो वो भी शक्ति का रूप ले लेता है। देखिए, ज्ञान विवेक शक्ति है, बुद्धि में ये भरता जाता है और शक्ति का वास होता है मन में। तो ज्ञान चिंतन से मन की शक्तियां भी बढ़ती हैं और बुद्धि का सद्विवेक भी बढ़ता है। हम सभी आत्माओं के उत्थान के लिए, हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, एक महान मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मनन शक्ति इसलिए परम आवश्यक है ताकि हमारी बुद्धि भी दिव्य बने, सद्बुद्धि बने और मन बहुत शक्तिशाली बने। ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है उन सब के लिए जो ज्ञान का मनन करते हैं। शक्ति तो बनती ही है लेकिन ज्ञान मनन से एक बहुत बड़ा लाभ होता है, विचार महान बनते जाते हैं। समय पर ज्ञान की मुख्य बातें याद आती हैं, नहीं तो क्या होता है? उलझने, समस्याएं, कोई बाधा समय पर मनुष्य को ज्ञान भुला देती हैं। एक छोटी सी ज्ञान की बात जो उस समय हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी भूल जाता है, बाद में याद आता है कि तब ये बात याद आ गई होती तो हम समस्याओं में उलझते नहीं। इसलिए मनन अवश्य करना है सबको। सुना होगा आपने, दादियां बहुत सुनाती हैं, मुरली सुनाकर सवेरे बाबा सभी को एकांत में ले जाते थे। अब मुरली का मनन करो और मुरली के बाद मनन बहुत सुंदर चलता है। किसी का मनन सवेरे सुंदर चल सकता है तो किसी का मनन मुरली सुनने के बाद सुंदर चलता है। सब अपने अपने मन की स्थिति को चेक कर लें और मनन शक्ति को बढ़ाने का लक्ष्य रखें। मैं अपनी भी एक बात सुना दूं। 72 में अव्यक्त बाबा ने मेरे से पूछा, जैसे योग करते हो ज्ञान का मनन भी करते हो? मैंने कहा नहीं, सीधी सी बात थी, मैं करता ही नहीं था। बाबा ने कहा मनन भी किया करो। और देखो, तब हम बाबा से बहुत सहज मिलते थे ना, हमने सामने बातचीत करते थे। मैंने बाबा से एक प्रश्न पूछ लिया, आप तो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, तो मनन की क्या जरूरत है? बाबा हंसने लगे और कहा, एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिल जाए योग में, और दूसरे सब्जेक्ट में न मिले, जीरो रह जाए, तो फुल पास कैसे होंगे? इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं, आज से मनन किया करो। फिर दोबारा कहा, फिर बहुत अच्छी बात कही जो आजकल मैं याद करता रहता हूं, कि मनन करेंगे तो समय आने पर जब चांस मिलेंगे स्वयं को सफल अनुभव करोगे। तब हमें पता नहीं था हमें क्या चांस मिलेंगे, हमें क्लास मिला करेंगी, हमें और कुछ करने को मिलेगा, ये हमें नहीं पता था। अब पता चलता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ज्ञान सुनाने के लिए वो मनन शक्ति बहुत उपयोगी हो गई। तो मैंने अगले दिन से जो कुछ किया वो आपको बता देता हूँ एक मिनट में, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये बाबा के महावाक्य मेरे लिए जैसे वरदान बन गए, बस मेरे अंदर जैसे सोई हुई मनन शक्ति जागृत हो गई। अगले दिन से सवेरे ही, रात ये मुलाकात रात को हुई थी, और अगले दिन सवेरे से ही मैंने पहला टॉपिक लिखा, भाव स्वभाव के टकराव से कैसे बचें। उस पे बहुत सारी पॉइंट्स आ गई, 15-20, उसमें मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे। और फिर ये क्रम बन गया कि रोज सवेरे मुरली के बाद मैं एक टॉपिक लिखता और उसका विस्तार कर देता, इसमें मुझे 15-20 मिनट लगते थे। तो मुझे तब भी पता चला कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, वो सब हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा रहता है, हम केवल उसको स्टार्ट करते हैं। लिखना शुरू किया तो बुद्धि ने काम करना प्रारंभ किया। तो इस तरह मैंने लगातार 100 दिन तक 100 टॉपिक्स पर लिखा, एक भी दिन मिस करने को मन नहीं करता था, वो एक आकर्षण होने लगा। उसके बाद कभी मनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये 72 की बात है, बहुत अच्छा हो गया। सभी अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करें, एक सहज तरीका अपना सकते हैं सभी। मुरली सुनी, मुरली के बाद 10 लाइनों में उसका सार लिख दें, अपने घर जाके कमरे में जाके, बहुत अच्छी आदत हो जाएगी। इसमें चाहे हम 5 मिनट ही लगाएं, हम मुरली भी उसी अटेंशन से सुनेंगे और उसका सार हमारी समझ में आएगा, आज बाबा हमें क्या कह रहे थे। तो मनन शक्ति बढ़ती जाएगी। अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं, उसका सार लिख लें, उसके मुख्य पॉइंट्स लिखें। मनन शक्ति का आधार है स्मरण। ध्यान देंगे आप इन शब्दों पर, मुरली की जो बात हम स्मरण रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, उस पर मनन चलता रहेगा। भूल गई तो उस पर मनन नहीं चलेगा। इसलिए स्मरण रखना बाबा की कुछ बातों को बहुत आवश्यक है। सवेरे से ही हम शुरू करें, बाबा की बातों को याद करें। बाबा जब साकार में थे तो कहा करते थे, मैं सवेरे सवेरे बच्चों के लिए भोजन बनाता हूँ। दीदी मनमोहिनी थी, बाबा के कमरे में जाती थी, चलो बाबा क्लास में, बाबा एक्यूरेट टाइम पर क्लास में जाते थे, 6:10, 5 मिनट योग और 6:15 से 7:15 मुरली, बिल्कुल एक्यूरेटली ये सब दिनचर्या चलती थी। कभी कभी दीदी थोड़ा पहले पहुंच जाती थी तो बाबा कहते थे, बच्ची तुम चलो, बाबा बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहे हैं, आते हैं। दीदी बाहर रुक जाती थी। तो जिस तरह बाबा सवेरे सवेरे मनन करते थे, उसी तरह हम भी स्वयं को मनन करने की आदत डालें। लिखने से ये अभ्यास बहुत अच्छा होता है, किसी को लिखने के बिना भी हो सकता है, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है। सवेरे मैं आपको एक दो संकल्प देता हूँ, सवेरे शुरू करें 5 स्वरूपों पर चिंतन करने से। हमारे 5 स्वरूप ये चिंतन करें, चिंतन से उन उन स्वरूपों का सुंदर अनुभव भी होता रहेगा। और योग भी हमारा ऐसा ही सब्जेक्ट है, योग के साथ यदि थोड़ा सा चिंतन भी प्रारंभ में हो जाता है तो हमारी मन बुद्धि लंबे काल के लिए एकाग्र हो जाती है। इसलिए योग से भी चिंतन को जोड़ें, सुंदर चिंतन। चिंतन का अर्थ ये ही नहीं होता हम कुछ नया सोचें, चिंतन को हम ये रूप दे दें कि हमें बाबा की सुंदर बातों को याद करना है। बस सहज भाव से इस तरह समझें। और मैं एक बात याद दिलाया करता हूँ, सबने सुनी है क्लासेज में, योग में हम बैठ रहे हैं, याद कर लें बाबा का एक महावाक्य, चिंतन का तरीका, बाबा का एक महावाक्य याद कर लें, तुम आत्माएं 2 युग तक देवताओं के साथ रहे, पीछे 2 युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। ये याद करते ही हम उठ जाएंगे बाबा के साथ रहने के लिए। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बाबा के महावाक्य हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उनकी बहुत केयर करता हूँ। जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूहान करता हूँ। जो मुझे बहुत याद करते हैं, वो तो मानो मेरी आंखों के सम्मुख ही रहते हैं। ये अच्छी बातें याद कर लेने से योग में बहुत स्थिरता हो जाएगी, इसको मनन कहेंगे। ऐसे सभी अपने पास ज्ञान की वो सुंदर बातें अवश्य नोट किया करें जो स्वयं को बहुत प्रिय लगती हैं। स्टूडेंट बन जाएं सभी, गॉडली स्टूडेंट, और अच्छी अच्छी बातें अलग से भी नोट करें। एक तो रोज मुरली लिख लेते हैं, उनमें से एक दो बात जो स्वयं को अति प्रिय लगती है, जो हमें बहुत आकर्षित कर देती है, उसे अलग से नोट करें, उसे पढ़ते रहें, तो वो सदा हमें एनर्जी देती रहेगी। देखिए सभी को ये बात याद रखनी है, आत्मा यहाँ बैठकर जो कुछ सोचती है उसकी एनर्जी सबसे पहले हमारे ब्रेन को जाती है, मस्तिष्क को। इसलिए जितने सुंदर विचार हमारे मन में होंगे उतनी ही श्रेष्ठ एनर्जी हम अपने ब्रेन को देंगे। जैसे हम एक भोजन सप्लाई करते हैं अपने मस्तिष्क को, मनन का ये बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसी मनन करने वाली आत्मा व्यर्थ से मुक्त होती रहती है। ज्ञान का बल ही आत्मा को व्यर्थ से मुक्त रखता है। और ये संकल्प, ये लक्ष्य सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा रखना है कि हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है। समय का ऐसा प्रभाव चल रहा है, बहुत लोगों को ये बैड अनुभव हो रहे हैं कि एक संकल्प मन में आ जाता है बुरा, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे बचेंगे सभी, ये कलयुग के अंत का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सभी अपने अंदर ज्ञान की कुछ ऐसी ठोस बातें रखेंगे जिनका बल व्यर्थ के प्रभाव को तेजी से नष्ट करता चले, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या संसार में व्यर्थ बनती जा रही है। बहुत लोग बताते हैं कि वो इतना ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें पता ही नहीं वो क्या सोचते हैं, और उनकी मन की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है उसे रोकना कठिन हो जाता, अनकंट्रोल्ड माइंड, इसे बहुत परेशानी हो जाती है, चिंताएं लग जाती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। सभी इससे बचेंगे तो मनन शक्ति को बढ़ाएंगे। सभी के पास ज्ञान का खजाना बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये ज्ञान हमारी बुद्धि को दिव्य करता है, ऐसा कहें हम, ज्ञान हमारी बुद्धि का निर्माण करता है और वो बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं हर जन्म में हमारे पास सुंदर बुद्धि रहे, किसी भी जन्म में हमें ये सोचना न पड़े कि हमारी बुद्धि कम है पढ़ाई में कार्यों में, तो हम मनन शक्ति को बढ़ाएं। सवेरे से शुरू करेंगे। अब हम दूसरी बात पर आ जाते हैं आज की मुरली की, वो मनन शक्ति के लिए बहुत सुंदर है, स्वमान। स्वमान से न केवल अभिमान नष्ट होता है बल्कि पहली चीज है कि मनुष्य को अपने सूक्ष्म अभिमान का ज्ञान हो जाता है। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जिनके पास अभिमान तो बहुत है लेकिन उन्हें उसका पता नहीं चलता। वो सोचते हैं बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अहम की जड़ें भी काफी सूक्ष्म और दूर दूर तक फैली होती हैं मनुष्य के अंदर। उसको पहचानना बहुत सूक्ष्मता है। मुझे एक बात और याद आ गई, बहुत बहुत साल पहले अव्यक्त बाबा ने एक सुंदर चेकिंग करने का एक तरीका बताया, स्वयं की चेकिंग। 10 मिनट योग में बैठो, देखो हमारा मन कहां कहां जा रहा है। आप पाओगे कि मन के इधर उधर भटकने के दो ही कारण हैं, मैं और मेरा। तो यदि हम इस सूक्ष्म मैं को पहचान लें और असली मैं में स्थित हो जाएं, तो बहुत जल्दी इस मैं से मुक्त हो जाते हैं हम, और तब हमारा जीवन हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन हो जाती है, दिव्य बन जाती है। आप सभी को याद हो, जिनके पास ज्ञान रतन बहुत हैं, भाई लोग ध्यान से सुन लें, माताएं भी, जिनके पास ज्ञान रतन बहुत हैं उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी समा लें इस बात को, स्थूल धन के पीछे बहुत भागे या ज्ञान रत्नों के खजाने जमा करके स्थूल धन को सह जाने दें, सब सोच लें। तो हमारे पास एक बहुत सुंदर अवसर है, श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित करना। बाबा की एक बात याद दिला दूं, आप सबको बहुत पसंद आएगी, साकार में बाबा ने कहा था और अव्यक्त में भी कहा था, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। यह है हमारा स्वमान। सोच के देखें, भगवान भी हमें बहुत ऊंची नजर से देखता है, जब हमारे सामने आकर बैठता है तब भी, और जब ऊपर से हम पर नजर डालता है तब भी। सोचो, मुझे बाबा देखता है अब तो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। ये सृष्टि की महान आत्मा है, ये बहुत पवित्र आत्मा है, ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये वही है जो जन्म जन्म भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती आई हैं, ये वही हैं जिनके दर्शनों से भी भक्त प्रसन्न होते रहे हैं, ये वही हैं जो भक्ति में सबको आशीर्वाद और वरदान बांटती आई हैं। हमें देखता है ऊपर से, जगाना चाहता है, मैं अपने बच्चों को जगा दूं स्मृति दिलाकर, तुम साधारण नहीं हो, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है, जगाता है बाबा। तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम्हारी यहां उपस्थिति ही संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। जग जाएं जरा हम सब, और रोज सवेरे उठकर स्थूल नींद से जगने के बाद अपने को विस्मृति की नींद से जगाया करें। सवेरे के समय का परमानंद लेने के लिए आप कल ये छोटा सा एक प्रयोग करके देखना। उठते ही आंख खुली हम जग गए, अब श्रेष्ठ स्मृति से स्वयं को जगाना, जैसे बाबा मुझे आवाज दे रहा है, बच्चे तुम वही हो जिन्हें सृष्टि का कल्याण करना है, तुम वही हो जिन्होंने कल पहले इस माया को जीता है, तुम साधारण नहीं हो, तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो। उठो, संसार की अनेक प्यासी आत्माएं तुम्हारे सकाश तुम्हारे वाइब्रेशंस की इंतजार कर रही हैं। उठो, उनकी कामनाएं पूर्ण करो। याद दिलाना अपने को जरा, और देखना सवेरे का समय कितना आनंद विभोर करने वाला होता है। नींद भी खत्म हो जाएगी और इधर उधर के संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे। तो सवेरे से ही हम चिंतन और सेश्वमान में स्वयं को स्थित करने लगे, बहुत काम आएगी ये बात हमारे। बाबा की मुरली में एक बात आज भी आई और आती रहती है, बहुत कम बच्चे मुझे मैं जो हूं जैसा हूं जानते हैं, आज भी आई थी। सत्य यही है, जो स्वयं को जानते जाएंगे वो बाबा को भी जानते जाएंगे, और स्वयं को वही आत्माएं जानती हैं जो स्वमान का लंबे समय से अभ्यास गहरा अनुभव उसकी सूक्ष्मता में स्वयं को लाती जाती हैं। एक मोटी चीज है, मैं एक महान आत्मा हूँ, सुन लिया हमने और सोचा ठीक है मैं महान आत्मा हूँ, ये मोटा स्वरूप हो गया, लेकिन इसको स्वीकार कर लें, मैं सचमुच महान हूँ, भगवान मुझे महान कह रहा है, इस गुड फीलिंग में स्थित हो जाएं, तो मान्यताएं जीवन में उभरने लगेंगी, और जितनी मान्यताएं हमारे जीवन में आएंगी संसार की आत्माएं भी हमें उतना ही महान दृष्टि से देखेगी। जो माताएं या कन्याएं घरों में रहती हैं और जो ये सोचती हैं हमें बहुत बंधन है, कन्या सोचती है हमें जाने ही नहीं देते सेंटर में, हमें तंग कर रहे हैं, शादी करो, जरा स्थित करें स्वयं को स्वमान में, आपके परिवार वाले ये मानने लगेंगे ये कन्या हमारे घर में देवी है, ये महान आत्मा आई है, इसकी शादी करना महान पाप हो जाएगा। करके देखो जरा, आपके चरण स्पर्श करने लगेंगे आपके समाज के लोग, अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर दें। जिन माताओं को बंधन है वो अपने को स्वमान में स्थित करें, सारा समाज आपको सम्मान देने लगेगा, विरोध समाप्त हो जाएगा। अनुभव है हजारों माताओं के जिनके बंधन छूट गए श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने से। स्वमान की सूक्ष्मता को लेते चले, जो बाबा के बहुत पुराने बच्चे वो स्वमान की सूक्ष्मता में स्वयं को स्थित करते चले। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, चिंतन करें इस पर, बहुत बड़ा कार्य बाबा ने मुझे दिया है, इसको अपने अंदर समाएं जरा। जैसे देखो, कई लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं और ये सब चीजें भूल जाती हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल बात। मैं एक उदाहरण देता हूं इसमें, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आज सवेरे कोई व्यक्ति आपको चार बुरे वचन बोल गया, अपमान कर गया, बिजी रहते भी उसके वो वचन बार बार याद आते रहेंगे, भुलाए भी नहीं भूलेंगे। हम चाहेंगे काम कर ले, छोड़ो, कह गया तो कह गया, फिर आएंगे। ऐसे ही अगर हम अपने मानस पटल पर छाप दें, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे भगवान ने ये महान कार्य दिया है विश्व कल्याण का, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं विश्व कल्याण के लिए, मुझे प्रकृति का भी कल्याण करना है, वातावरण को भी शुद्ध करना है, सभी मनुष्यों को भी कल्याणकारी दृष्टि देनी है। छाप दे इसको अपने कॉन्शियसनेस में, तो बिजी होते ये भी याद आता रहेगा, और ये याद रहना माना हम बहुत अलर्ट रहेंगे, हम छोटी मोटी बातों से, व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ स्लोगन लिखा रहता है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। ये तो सबको अपने दिल पर लिख लेना चाहिए, लक्ष्य हमारा बहुत महान, विश्व का कल्याण करना है। आप देख रहे हैं साकार पार्ट भी पूरा हुआ था, अब अव्यक्त पार्ट भी समाप्ति की ओर है, अब तीसरा फेज आएगा हमारे सामने, एक बहुत वंडरफुल पार्ट, एक जय जयकार का समय, और सेवाएं उन आत्माओं के द्वारा होगी जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया है। बोल के द्वारा सेवा नहीं, सेवा स्थिति के द्वारा होगी, वाइब्रेशंस के द्वारा होगी, दृष्टि के द्वारा होगी, वरदानों के द्वारा होगी। तो हम सभी, ये जो तीसरा फेज हमारे सामने आ रहा है, इसके लिए स्वयं को तैयार करें। और जो आत्मा लंबा काल जिस स्वमान में रही है, वही फीलिंग दूसरों को उस आत्मा के द्वारा आएगी, और उसी तरह के वाइब्रेशंस दूसरों को उनसे प्राप्त होंगे, क्योंकि संसार का हाल दिनों दिन बिगड़ता जाएगा, मानसिक समस्याएं विकराल रूप लेती जाएंगी, बीमारियां भी, अभी तो चलो स्वाइन फ्लू आया, कंट्रोल में हो जाता है, थोड़े लोगों को होता है, शोर ज्यादा मचता है, 20 लोग मर गए तो हाहाकार, एक स्टेट में, अरे गुजरात में 100 लोग मर गए भाई, 500 को स्वाइन फ्लू हो गया, गुजरात की आबादी की भेंट में ये भी छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं हम इसको बुरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन महामारियां ऐसी फैलेंगी जैसे कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है। किसी ने मुझे बताया 100 व्यक्ति में एक को कैंसर हो गया है, ये नीचे आ जाएगी रेशो, तो महामारियां बढ़ जाएंगी, लाइलाज रोग बढ़ जाएंगे, केवल योगी आत्माओं के वाइब्रेशंस दूसरों को ठीक कर पाएंगे, ये अनुभव होता रहेगा। तो हम सभी अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करके आने वाली सेवाओं के योग्य बनाएं, योग शक्ति भी बढ़ाएं, लक्ष्य बना लें अपना महान लक्ष्य, ताकि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। लक्ष्य की बात बहुत सुंदर है जीवन के लिए। एक फाइनल लक्ष्य है हमारा संपूर्ण बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, जिसके लिए आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, याद कर लेना आप। फूल किंग ऑफ फ्लावर हैं लक्ष्मी नारायण, ऐसे जिनकी सुगंध सारे संसार की दुर्गंध को समाप्त कर दे, ऐसे किंग ऑफ फ्लावर हमें भी बनना है। यहाँ लक्ष्मी नारायण तो भविष्य में होंगे, तो सभी आज मैं आपको तीन विशेष स्वमान की याद दिला रहा हूँ, उनमें सभी स्वयं को स्थित करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ और कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। तीनों ऐसे हमारे स्वमान हैं जो हमारे लेवल को बहुत ऊंचा उठा देंगे और छोटी-छोटी बातें जीवन से पीछे छूट जाएंगी। पूर्वज हैं हम, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं हमें, संसार को सकास देनी है हमें, हम सृष्टि के आधार मूर्त हैं, हमें पालना करनी है सबकी पूर्वज बनकर। ये चिंतन हमारा होता रहे, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की पालना, हमारी पवित्र दृष्टि लोगों की पालना करेगी, हमारा प्यार का वाइब्रेशंस दूसरों की पालना करेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी बात कल से सुनने को मिली, मुझे उस पर बहुत ध्यान गया, जिस पर हम कम ध्यान देते हैं। दादी जानकी अभी लंदन में गई थी, तो वहां की कुछ बहनें आई विदेशी अंग्रेज, तो मैंने पूछा दादी इस बार गई कैसा लगा सबको, कि इस बार तो दादी प्यार की मूर्ति थी, एकदम प्यार के वाइब्रेशंस फैल गए उनके वहां जाते ही, का एकदम हल्के हो गए सब। मैं सोच रहा था हमारा प्यार दूसरों की बहुत श्रेष्ठ पालना है, हमारे प्यार के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को रिलैक्स करते हैं, उन्हें नया जीवन देते हैं, उनके चित्त को शांत करते हैं। तो हम प्रेम स्वरूप में स्थित होकर संसार को जरा प्यार की दृष्टि भी दिया करें, जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को प्यार की नजर से देख ले तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है ना, माताओं को पता है ना, और माताएं नेचुरल रूप से करती हैं। बच्चा रो रहा है, प्यार से पुचकारा और गोद में उठा लिया, बच्चा शांत। संसार की भी रोती और तड़फती आत्माएं हमारे प्यार के वाइब्रेशंस को पाकर शांत हो जाती हैं। इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कुछ क्षणों के लिए आपको इस गुड फीलिंग में ले चलना चाहता हूँ। देखिए, सभी स्वीकार करें, कल पहले हमने माया पर संपूर्ण विजय पाई थी। ये स्वीकार करते ही इस विजय पाने की अंदर छुपी हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी और माया पर विजय होने लगेगी। बहुत लोग शिकायत करते हैं क्रोध जाता नहीं हमारा, लेकिन जाएगा। आप इस स्वमान को जागृत करें, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, काम जीत हूँ, अहंकार से मुक्त हूँ, इन सब पर हमारी विजय होने लगेगी और ये स्वमान हमें बहुत काम आएगा। क्योंकि बाबा ने एक बहुत गुह्य बात कही हुई है, उसका स्वरूप आजकल दिखाई देने लगा है, कि जब अंतिम समय आएगा तो माया के पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे अब वो अटैक होने लगा है, फुल फोर्स से वार करेंगे। अब वो वार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा ने सावधान किया था, जिस विकार का अंश जिसके पास रह जाएगा वो वंश बन जाएगा और इससे बहुत आत्माएं माया से हार खा जाएंगी। इसलिए मैं विजय रतन हूं, इस माया पर मेरी जीत निश्चित है। कल पहले भी मैंने इस माया को जीता है। इस स्वमान को जरा बहुत बढ़ाते चलें और बाबा से स्वयं में शक्ति भी भरते चलें, ताकि माया पर हमारी संपूर्ण विजय हो। मुझे कभी कभी बहुत अच्छे समाचार मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक का फोन आया, मैं एक साल से ज्ञान में हूँ, मेरी प्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इम्प्योरिटी पूरी तरह समाप्त हो गई। हम जानते हैं एक साल ज्ञान में चलने से ये नहीं होता, पर उसको कुछ गॉडली ब्लेसिंग्स मिल गई है, उसको कुछ पुण्य कर्म उसके काम आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। हम सब भी अपने प्योर संस्कारों को इमर्ज करें और कल सवेरे जैसे मैंने आपको कहा उठते ही अपने को जगाएंगे। समझ गए ना, जगाएंगे विस्मृति से जगाएंगे और फिर पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ये पांचों स्वरूप स्मृति है ना हमारी, ये स्वयं को जगाने का बहुत सुंदर तरीका है। किसी को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, अपने पांचों स्वरूपों को याद करें, उस पे बहुत अच्छा चिंतन करें, तो अनेक तरह के स्वमान जागृत हो जाएंगे। तो दोनों चीजों पर सभी बहुत ध्यान देंगे, मनन शक्ति को बढ़ाना है। मैं एक लास्ट बात कह के समाप्त करूंगा, जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, जो चाहते हैं कि सारा दिन हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे, दिन में पांच बार कभी भी, पांच सात बार किसी भी एक सुंदर बात पर एक मिनट के लिए चिंतन कर लिया करें। जैसे उदाहरण के लिए मुझे एक बात बहुत प्रिय लगती है बाबा की, वही आपको भी याद दिलाता हूं। मैं एक महान आत्मा हूं, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। बाबा ने मुझे शक्तियां और वरदान दिए हैं विश्व कल्याण के लिए, मुझे यही काम करना है। एक मिनट लगेगा, सुंदर चिंतन कर लें तो सारे बाकी के चिंतन समाप्त हो जाएंगे और स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। योगयुक्त रहना बहुत सरल होगा। तो सभी चिंतन शक्ति से अपने को शक्तिशाली बनाएं और स्वमान में स्थित हो जाएं।